किसी आईएएस अधिकारी की सफलता का एक मापदंड ये भी है कि दो अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारों में उसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाए। रक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए उत्तर प्रदेश काडर के 1965 बैच के योगेंद्र नारायण को राजनीतिक रूप से धुर विरोधी रहे उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी और कल्याण सिंह के प्रधान सचिव बनने का श्रेय हासिल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए में टॉप करने वाले योगेंद्र नारायण की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के ही बॉयज हाई स्कूल में हुई थी, जहां मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन उनसे एक साल सीनियर थे।
अमिताभ बच्चन जी हमारे एक साल सीनियर थे, पर मैं बहुत गौरव से कहता हूं कि उनके साथ भी मैंने एक्टिंग किया है। जब हम लोग क्लास थर्ड में थे, वो क्लास फोर्थ में थे, एक छोटा स्टेज होता था स्कूल का, तो उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। उसमें उनकी फोटोग्राफ मेरे पास है, और उस समय से ही वो बड़े अच्छे एक्टर माने जाते थे, और उनको एक साल बेस्ट एक्टर प्राइज़ मिला था। फिर मुझे कुछ साल बाद मुझे भी मिला। पहले हम लोगों का रिवाज था कि जो सीनियर क्लासेस के हैं वो लोग बेचते थे अपनी 50% प्राइस पर, तो उस समय तो और आने और रुपए और पैसे चलते थे, तो मुझे याद है सब किताबें उनकी खरीद कर फिर टोटल किया जाता था कि 5 रुपए 4 आने इतने पाई करके। तो मैं उनके घर गया था, सब उनकी जो अच्छी किताबें थी मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी।
आईएएस में चुने जाने के बाद योगेंद्र नारायण को शुरू में अलीगढ़, कानपुर और मुजफ्फरनगर में तैनात किया गया। 1974 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ जिला मजिस्ट्रेट का पुरस्कार दिया गया। उनके बैचमेट और मारुति उद्योग के प्रबंध निदेशक रहे जगदीश खट्टर बताते हैं।
योगेंद्र नारायण और हमने आईएएस इकट्ठा ज्वाइन किया था 1965 में। फर्क यह था कि वो इलाहाबाद से आए थे और हम दिल्ली से गए थे, लेकिन मसूरी में हमारी मुलाकात हुई। हमारे बैच में ये सबसे पॉपुलर ऑफिसर माने जाते हैं। ये क्राइसिस में इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है। अगर मुझे याद आता है तो पहले ये मुजफ्फरनगर में डीएम बने थे, तो काफी इन्होंने अच्छा काम किया और पॉपुलर रहे, वहां से हट गए। और कुछ समय के बाद आई थिंक इमरजेंसी में था, वहां पे कुछ राइट्स हुए, तो सरकार ने फिर इनको वहां भेजा। यानी ये दिखाते हैं कि इनकी क्या रेपुटेशन थी कि क्राइसिस है तो उसमें जाएंगे। मेरे ख्याल में इनको हेलीकॉप्टर से या जैसे भी है वहां ले गए, इनको चार्ज दिया और कुछ ही दिनों में वहां पे शांति इन्होंने कर दी। इन्होंने सारे कैरियर में काफी सेंसिटिव जॉब्स किए हैं, सेक्रेटरी रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं। और कहा यह जाता है कि पहले जो भी डिफेंस सेक्रेटरी रहे थे उनका सर्विसेज चीफ के साथ कुछ ना कुछ टेंशन होती थी या क्या है, कुछ लोग कहते हैं स्वाभाविक है, लेकिन योगेंद्र नारायण साहब के साथ नहीं था और इनको सब सर्विस चीफ ने इकट्ठा फेयरवेल दिया।
उत्तर प्रदेश में कुछ समय बिताने के बाद योगेंद्र नारायण को भूतल यातायात और जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर तैनात किया गया। वहां उनके सामने एक विचित्र समस्या उठ खड़ी हुई जब राजीव गांधी ने आदेश दिया कि भूमि से घिरा देश होने के कारण कोलकाता बंदरगाह पर नेपाल को मिलने वाली सारी सुविधाएं वापस ले दी जाएं। कारण था नेपाल नरेश का राजीव गांधी के प्रति व्यवहार, जिसे उन्होंने बहुत नापसंद किया था।
हम लोग पास इंस्ट्रक्शंस आए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कि ये जो कलकत्ता पोर्ट में एक बर्थ रिजर्व होती है कि जितने भी बाहर से माल आता है, शिपिंग से आता है नेपाल के लिए, वो एक बर्थ उनके लिए रिजर्वड है, कि इसका ज़रा आप देखिए किस तरह उनको एक मैसेज जाना चाहिए नेपाल को कि इस तरह मिसबिहेव ना करे हमारे देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ। तो ये इंस्ट्रक्शंस आए कि इस पोर्ट को क्लोज किया जाए। जब आदेश मिले तो हम लोगों ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन से बात की, उन्होंने कहा साहब ये तो ठीक नहीं होगा और मुझे लिखित आदेश चाहिए। अब मैंने अपने सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा लिखित कैसे भेजें ये आदेश, ये तो एक स्ट्रेटजी है, एक पॉलिसी मैटर है, जिससे कि हम लोग थोड़ा दबाव डाल सकें नेपाल के ऊपर। फिर मैंने उनसे बात की चेयरमैन कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, तो मैंने कहा देखिए एक सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा मैं आपको लिखित आदेश भेजूंगा एज जॉइंट सेक्रेटरी कि आप पर्टिकुलर पोर्ट को क्लोज करिए कुछ दिन के लिए, और आप जो है इसको आप अपने अलमायरा में रखिएगा, अगर कभी आपसे सवाल किया जाए उसमें आप दिखा सकते हैं इसको, पर जब तक ना हो आप रखे रहिए। तो फिर उन्होंने ये स्ट्रैटेजी निभाई गई कि वहाँ कैलकटा पोर्ट में सिल्टिंग बहुत होती है, उन्होंने बनाया एक पॉलिसी कि सिल्टिंग बहुत हो गई इस बर्थ पर, इसको क्लोज कर दिया जाए। अब उधर से नेपाल के एम्बेसडर आते थे, हम लोग से मिलते थे कि हमें खुलवाइए, जल्दी खुलवाइए। मैंने कहा भाई सिल्टिंग हो रही है तो अब हम क्या खुलवाएं इसको, वो भी समझ गए। फिर उन्होंने भी अपने सरकार से बात की तो 15 दिन बाद वो खोला गया।
6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो योगेंद्र नारायण कल्याण सिंह के प्रधान सचिव थे और उनके साथ लखनऊ के उनके निवास में बैठे हुए सारे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। योगेंद्र नारायण बताते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिर गया तो उत्तर प्रदेश के DGP SM त्रिपाठी ने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे कल्याण सिंह ने देने से इनकार कर दिया था।
मुख्यमंत्री आवास में 3 मंत्री लोग बैठे थे मुख्यमंत्री जी के साथ और टीवी देख रहे थे। अचानक हम लोगों ने टीवी में देखा कि लोग चढ़ रहे हैं, केंद्रीय फोर्सेस तो लगी हुई थी, पर उस बीच में क्या किया था कर सेवकों ने कि जहां स्ट्रक्चर था, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर और केंद्रीय बल था जहां, उसके बीच में उन्होंने घेरा बांध लिया था। तो जब ये कर सेवक चढ़े ऊपर तो केंद्रीय बल जो था पुलिस फोर्स वो आउटर सर्कल में थी, इनर सर्कल में कर सेवकों ने अपना एक बहुत भारी झमघट तैयार कर लिया था और कुछ लोग चढ़ गए उसमें से। तब DGP आए मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने फायरिंग के लिए परमिशन मांगी तो कल्याण सिंह ने कहा कि आप क्या कुछ और कर सकते हैं लाठी चार्ज टियर गैस शेलिंग करके। कहने लगे नहीं साहब भीड़ इतनी उग्र हो गई है कि हमें फायरिंग करनी पड़ेगी। तो कल्याण सिंह ने पूछा कि फायरिंग में क्या बहुत लोग मरेंगे? कहने लगे हाँ साहब बहुत लोग मरेंगे और हो भी सकता है कि जो कर सेवक हैं वो अटैक भी करें पुलिस फोर्स पर, तो काफ़ी बड़ा मैसेकेयर भी हो सकता है। तो कल्याण सिंह ने सोच समझ के कहा कि मैं नहीं ऑर्डर करूँगा, मैं परमिशन आपको नहीं देता फायरिंग के लिए। और ये भी कहा DGP साहब से और होम सेक्रेटरी से कि आप फाइल पर मेरे ऑर्डर्स ले लीजिए कि आपका प्रस्ताव है कि फायरिंग आप करना चाहते हैं और मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूँ।
किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ करो, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे तो अधिकारियों ने आदेशों का प्रपालन किया है। और मैं इस बात के एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? NIC की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी निभाने के बाद योगेंद्र नारायण को केंद्र में रक्षा सचिव बनाया गया। योगेंद्र नारायण बताते हैं कि एक बार उन्हें तत्कालीन रक्षा मंत्री जसवंत सिंह के साथ मॉस्को जाने का मौका मिला, जहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात से पहले क्रेमलिन के मुख्य द्वार पर उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वो अपना परिचय पत्र साथ नहीं लाए थे।
हम लोग के पूरे डेलीगेशन के मेंबर्स को एक वो दिया था आइडेंटिटी कार्ड, जिससे कि हम लोग एंटर कर सकते थे, अंदर जा सकते थे क्रेमलिन में। हुआ ये कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जसवंत सिंह जी अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गए थे। अब क्रेमलिन में तो वो जो मोटे ताज़े लंबे आदमी खड़े रहते हैं सिक्योरिटी, उन्होंने का आइडेंटिटी कार्ड अब उनके पास नहीं था तो उनको रोक लिया गया। अब जसवंत सिंह जी तो अपने आप ही आर्मी ऑफिसर रह सकते थे, तो बड़े नाराज हुए कि हाउ कैन अ सबल्टन स्टॉप मी। तो फिर हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी क्या, व्हाई डोंट यू अलाउ हिम, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी हैव अ मीटिंग विद प्रेसिडेंट पुतिन। तो वहाँ के जो बाकी गार्ड्स थे और जो सीनियर लोग थे, फिर वो रश करके आए तो हमारे एम्बेसडर साहब ने समझाया कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गए, पर हम लोगों के पास सबके पास है, मैं एम्बेसडर हूँ सब। तो फिर हम लोग को परमिशन मिला जाने का, पर हाँ उनको अच्छा नहीं लगा कि उनको रोका गया।
इसी तरह की एक घटना बाद में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी हुई, जब अमरीका की सरकारी यात्रा के दौरान बाकायदा उनकी तलाशी ली गई।
इंडिया में तो जितने हमारे विदेशी मंत्री लोग आते हैं सब, उसमें हम लोग फ्रिस्किंग नहीं करते हैं, पर अमेरिका में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस और हम लोग सब गए थे वहाँ, उस समय इनकी पूरी फ्रिस्किंग हुई, जूते भी उतारे गए। एम्बेसडर साहब ट्राई कर रहे थे उनको समझाने के लिए, सिक्योरिटी वालों को, कि भाई ये मिनिस्टर हैं डिफेंस के, यहाँ आमंत्रित किए गए। उन्होंने कहा नो, वी हैव नो ऑर्डर्स। तो पूरी फ्रिस्किंग हुई, पर जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी बुरा नहीं माना, वो बहुत ही सिंपल आदमी थे, पर हाँ हम लोग को बुरा लगा।
योगेंद्र नारायण ने दो रक्षा मंत्रियों जसवंत सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया। वो बताते हैं कि दोनों बहुत काबिल रक्षा मंत्री थे, लेकिन दोनों के काम करने के ढंग में बहुत फर्क था।
जॉर्ज फर्नांडिस तो बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड के थे, सिंपल आदमी थे। उनका थर्ड फ्लोर में ऑफिस था, वो रोज सीढ़ियों से चढ़ते थे, सीढ़ियों से उतरते थे, हम लोग सब लिफ्ट से जाते थे। घर में अगर लंच देते थे तो बहुत ही साधारण खाना, और अपने बेडरूम में पास में डाइनिंग हॉल था उनका, और बेडरूम में हम लोग देखते थे कि वो अपना जो पजामा कुर्ता है धोकर तकिए के नीचे रखते थे आयरनिंग के लिए, क्योंकि बेसिकली वो लेबर लीडर थे, एक बड़े जेन्युइन लेबर लीडर। वो आए मेरे पास आईबी वाले भी कि साहब आप इनको परसुएड करिए कि सिक्योरिटी ले लिया करें। ये क्या करते थे, बिना सिक्योरिटी के पैदल आते थे अपने घर से ऑफिस, वो कहते थे मैं कार में भी नहीं आऊँगा। तो बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने ये परसुएड किया कि एटलीस्ट कार में आइए, पर कहने लगे सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए हमारे चारों तरफ। जो जसवंत सिंह थे बहुत ही केपेबल, बहुत ही वेल रेड आदमी, और डिफेंस और सिक्योरिटी पर इतना माहिर डिफेंस मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, पर वो अपने एज ए मिलिट्री ऑफिसर उस स्टाइल में रहते थे, सख्त डिसिप्लिन और शॉर्ट स्पीचेस, और अपना जो डिसीशन लेना है दे दिया, और एक बुशर्ट अपनी हाफ रोल्ड स्लीव्स हरदम पहनते थे। और जब मैंने देखा उनको पार्लियामेंट में, जब मैं सेक्रेटरी जनरल बना, कि वो कुछ अपना हाथ हरदम अंदर रखते थे अपने बुशर्ट के अंदर, किसी ने बताया कि वो देवी जी के भक्त हैं और अपने छूते रहते हैं।
रक्षा सचिव के पद से रिटायर होने के बाद योगेंद्र नारायण को राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, जहां उन्होंने सदन की कार्रवाई को बहुत नजदीक और ध्यान से देखा। मैंने उनसे पूछा कि संसद में सांसदों के अपरिपक्व व्यवहार के पीछे आप क्या कारण मानते हैं?
इंडिविजुअल एमपी अपने आप नहीं करता, ये पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गई है और पार्टी डायरेक्टिव्स फॉलो करता है। अगर लेजिस्लेटिव पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें हंगामा करना है या स्पीकर का टेबल के चारों तरफ जाना है, तो पार्टी डिसाइड करती है, नॉट द इंडिविजुअल MLA। दूसरा ये है कि जब गवर्नमेंट इनकी मांगे स्वीकार नहीं करती, लेटेस्ट से कि वो चाह रहे हैं कि डिस्कशन ऑन अ सर्टेन टॉपिक, और गवर्नमेंट असहमत है कि हम डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे इस पर, या हम करेंगे तो विदाउट वोटिंग करेंगे, तो उसमें भी ये हो जाता है कि वो हंगामा हो जाता है। और ज़्यादातर अब ये होने लगा, जो पहले नहीं होता था, कि क्वेश्चन आवर ही नहीं होने देते। देखिए, क्वेश्चन आवर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ दी एग्जेक्टिव टू दी लेजिस्लेचर। अब क्वेश्चन आवर भी बॉयकॉट होने लगा है, हंगामा होने लगा है, क्वेश्चन आवर एडजर्न होने लगा है। तीसरा इसका कारण ये भी होता है कि आपने कोई, जैसे आप बिल लाए पास करने के लिए, अब वो ऑपोजिशन चाह रहा है कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिए, लेट देम डिसाइड कि सही है या नहीं, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमें तो तुरंत ये बिल पास करना है, तो इसमें फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो मिनिस्टर होता है ना, ही हैज़ अ वेरी एक्टिव रोल टू प्ले, और एक तरह से उन्हीं की जिम्मेदारी है कि हाउस रन करें, प्लस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। फीलिंग ये भी आ जाती है कभी कभी ऑपोजिशन में कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बायस्ड हो गया है, तब भी बड़ा मुश्किल होता है हाउस चलने।
योगेंद्र नारायण को नजदीक से जानने वालों में प्रसार भारती की पूर्व अध्यक्ष मृणाल पांडे भी हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनसे 2 साल जूनियर हुआ करती थी।
मैं तो सीधे सीधे नैनीताल जैसी छोटे शहर से आई थी यूनिवर्सिटी में, इसलिए मेरे लिए सब कुछ नया नया था, और जैसा उस जमाने का चलन था, हम लोग ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ करके निकले थे, तो इसलिए लड़कों से बात करने का या इंटरेक्ट करने का कोई खास हम लोगों को अनुभव नहीं था। फिर भी हमारे डिपार्टमेंट की फिजा कुछ ऐसी थी कि वहाँ एक तरह का खुलापन और इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन हमेशा होता रहता था, तो जो पढ़ने लिखने वाले रुचि वाले छात्र थे, छात्र छात्राएं थे, उनमें आपस में बातचीत होती रहती थी। तो योगेंद्र नारायण से, हालांकि मैं BA परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी और ये मुझसे 2 साल सीनियर थे, लेकिन चूंकि हम दोनों ही अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी थे, आपस में बातचीत होती थी। फिर एक वहाँ का उस जमाने में एक बड़ा, जिसे कहा जाए इंटेलेक्चुअली थोड़ा जाना माना क्लब था, फ्राइडे क्लब, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर RN देव, बहुत जाने माने उस जमाने के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो उन्होंने हम लोगों को दोनों से कहा कि तुम लोग ज्वाइन कर लो। तो मैं तो इतनी सीधी थी, मुझे ये भी पता नहीं था कि अंडर ग्रेजुएट्स को अमूमन उसमें दाखिला नहीं दिया जाता है, लेकिन जब मुझे और योगेंद्र को, जिसे हम लोग उस जमाने में योगी कहते थे, योगी और मेरा दाखिला फ्राइडे क्लब में एक साथ ही हुआ, और बहुत सज्जन व्यक्ति थे योगी, हमेशा से बहुत लेट बैक सज्जन और कम बोलते थे लेकिन बहुत फ्रेंडली और बहुत भले स्वभाव के थे, बल्कि हम लोग आपस में उनको योगी द बेयर कहते थे। और पढ़ने में तो जाहिर है मेधावी थे, और सबसे अच्छी चीज उनमें ये थी कि अभिमान या उस तरह का उनमें भाव नहीं था। कई लड़के थे हम लोगों के साथ के जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे, और मुझे सिविल सर्विस परीक्षा के लिए कोई खास कभी रुचि रही नहीं, और मुझे इसलिए एक तरह की थोड़ी सी खिंचाव रहता था उन लोगों से जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते थे। मुझे लगता था कि ये बहुत मंडेन और मध्यवर्गीय किस्म की क्या सपना है कि आप सीधे पढ़ के निकले और फिर अफसर बन जाए, ये भी कोई बात हुई। लेकिन योगी जैसे कई मित्र थे जिन्होंने इस धारणा को निरस्त किया। फिर जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि योगी मेरे पति के बैचमेट भी हैं, और फिर उसके बाद मेरी माँ लखनऊ में रहती थी, मैं लखनऊ आई तो ये पता चला कि जनाब कलेक्टर हैं लखनऊ के। फोन किया तो बोले कि नहीं नहीं जरूर आओ और खाना यही खाना। और उनकी पत्नी से मुलाकात थी, बहुत उतने ही अच्छे शिष्ट स्वभाव की वो भी थी।
योगेंद्र नारायण की आत्मकथा बॉर्न टू सर्व, पार गेम इन ब्यूरोक्रेसी के अलावा उनकी कविताओं की एक किताब भी प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा उनको थिएटर और शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक है।
मैं एक तो पोएट्री लिखता हूँ, मेरी एक किताब भी पब्लिश हुई है क्लाउड्स एंड अदर पोएम्स, और दूसरी किताब की भी सामग्री तैयार हो गई है। इसके अलावा मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था यूनिवर्सिटी तक, आई यूज्ड टू एक्ट, एंड अब मुझे बहुत शौक है प्लेज देखने का। तीसरा, मुझे क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। फिल्म्स का मुझे शौक है, पर उससे ज़्यादा फिल्म सॉन्ग्स का शौक है। मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा है, उसका नाम है कारवा। उसमें 5,000 प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, वो मैं सुबह रोज लगा देता हूँ।
तो दो एक सॉन्ग का जिक्र करें जो आपको मंत्रमुग्ध करते हो, कहीं भी आप सुने तो एकदम आप ठिटक जाएं।
जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें।
जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।